विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे हे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विषमानुसुते प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरिहराय नमः। कृष्ण यदवाय नमः यदवाय माधवाय केशवाय नमः यदवाय माधवाय केशवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासु देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति श्रीमद्भागवतम स्कंध 6 अध्याय 14 श्लोक संख्या 23 23-26 तक। हाँ, श्लोक संख्या 23-26 तक। जय श्री कृष्ण। चित्रकेतु वाच राजा चित्रकेतु ने उत्तर दिया, चित्रकेतु वाच भगवन् किं न विदन्तिं तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वंस्त पापानां बहिरन्तः परिशिशु। चित्रकेतु वाच राजा चित्रकेतु ने उत्तर दिया, भगवान हे परम शक्तिशाली साधु, किम क्या न नहीं विदितम ज्ञात है तपः तपस्या ज्ञान ज्ञान समाधि भी तथा समाधि से योगिनाम महान योगियों या भक्तों द्वारा ध्वस्त पापानाम समस्त पाप कर्मों से पूर्णतया विमुक्त बही बाहर से अंतः भीतर से शरीरिषु बद्ध जीवों में जिनके भौतिक देह है। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा, तात्पर्य इसमें नहीं है, 3-4 श्लोक है एक साथ में। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महाप्रभु अंगिरा, तपस्या ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं, अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महाप्रभु अंगिरा, तपस्या ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन को समस्त बंधनों से मुक्त हैं, अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। यहां पर कथा चल रही है श्रीमद् भागवत से। यहां पर चित्रकेतु महाप्रभु कह करके संबोधित किया अंगिरा जी को, और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जीवन में यदि तपस्या हो, ज्ञान हो, तपस्या तो बहुत लोग करते हैं, बिजनेसमैन कम तपस्या थोड़ी करते हैं, सुबह से शाम तक तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, पत्नी बच्चों को भी त्याग देते हैं, पैसे अर्जन करने में उनका जीवन इतना विरक्त होता है कि बच्चों से कभी कभी महीनों महीने नहीं मिलते हैं, लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं कहा जा सकता है। यहां दिव्य शब्द है, दिव्य शब्द जो है वो भगवान के लिए है। यदि दिव्य तपस्या किया जाए, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्रकाजेन सत्वम। यहां दिव्य तपस्या का वर्णन है, भगवान के लिए तपस्या होना चाहिए। आपके जीवन में कोई भी कार्य हो, जितना मर्जी काम हो, लेकिन वह कार्य, वह सेवा भगवान के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप आश्रम में ही फुल टाइम रहें तो आप कर सकते हैं। आप अपने अपने घरों में भी भगवान के चित्रपट रख करके, विग्रह रख करके उनके लिए सेवा कर किया जा सकता है। गृहवा बनेते थाक, हा गौरांग बने डाक। घर में रहें या जंगल में रहें, ऑफिस में रहें, दुकान में रहें, मकान में रहें या मंदिर में रहें, आपकी सेवा दिव्य होनी चाहिए। आपकी जो सेवा है वो भगवान के लिए होना चाहिए, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे भक्त लोग एकादशी तपस्या करते हैं, एकादशी करते हैं, 3 बजे बिस्तर को त्याग देना भी एक तपस्या है, बिना बात किए 16 माला का जप करना भी एक तपस्या है, बिना बात किए किसी से वो जप है ठीक से, ये भी एक बड़ी भारी तपस्या है। 2 घंटा का मौन लेना भी एक तपस्या है, मौन रखना अपने को, अन्य प्रकार के वार्तालाप न सुनना भी एक दिव्य तपस्या है। ऐसे दिव्य तपस्या करने से मनुष्य के अंदर भक्ति और ज्ञान, यहां कहते हैं ऐसी तपस्या करने से हे महाप्रभु अंगिरा, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप अपने जीवन में, जो अपना जीवन तो शुद्ध होता ही है, लेकिन दूसरा जो अगला व्यक्ति खड़ा है उसके विषय में भी जानने की शक्ति मिलती है। इसलिए कभी कभी भगवान का एक नाम है त्रिकालज्ञ, हम त्रिकालज्ञ दास हैं, सेवक हैं। त्रि मतलब तीनों काल के, तीनों समय के बात को जानने वाला वो भगवान है, इसलिए उनका नाम है त्रिकालज्ञ, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान। जो तीनों समय को जानता है ठीक से वही त्रिकालज्ञ हो सकता है। तो संत लोग भी, महात्मा लोग भी तपस्या के द्वारा बहुत कुछ बात समझ जाते हैं। कहते हैं ना कभी कभी कि आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं, सब समझ में बात आती है, या अगला जब आता है तो व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं यह अंदाज लग रहा है कि ऐसे करने वाला है, वो बात समझ में आती है। यह केवल संभव हो तपस्या के द्वारा, केवल ठीक से जाप के द्वारा, भागवत के श्रवण के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है। यहां कहते हैं कि आप संसार के सारे बंधनों से मुक्त हैं। हम लोगों के जीवन में तो बड़ा बंधन है ना, बहुत बंधन है। ज्यादा नींद लेना भी एक बंधन है, अत्यधिक भोजन करना भी एक बहुत बड़ा दोष माना गया है, बंधे हो गए उस सबसे। लेकिन यदि जीवन में दिव्य ज्ञान आ जाए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु पूजा में रोज हम लोग आते हैं, दिव्य ज्ञान यदि आ जाए, आध्यात्मिक ज्ञान यदि अंदर प्रविष्ट हो जाए, तो दिव्य ज्ञान आने से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय को प्रकाशित कर देता है, प्रकाशमय बना देता है, वह व्यक्ति देखने लगता है, भगवान से उसका मिलन होने लगता है, भगवान से बात करने लगता है। वो एक जगह गाते हैं उसमें कि श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, बंधु हैं, मित्र हैं गुरु, गुरु मने ज्ञान भी होता है, गुरु मने भारी भी होता है, गुरु मने ज्ञान। देखते ना संसार में भी यदि किसी ने गाड़ी गुड़ी भी सिखा दिया तो कहते हैं गुरु कहाँ जा रहे हो तुम, उसको भी गुरु बना लेते हैं। तो भौतिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में यदि आप प्रांगत हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में यदि आप निष्णात हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में यदि आपकी प्रगति है, तो आपको फिर जानने में और पाप कर्म से मुक्त होने में बहुत समय नहीं लगता है, बहुत समय नहीं लगता है। आप समस्त पापों से मुक्त हैं और संसार के जितने बंधन हैं उन बंधनों से भी आप मुक्त हैं। हम जैसे पापमय जीवन वाले व्यक्ति को आप ठीक से समझ सकते हैं। अरे खुल गया जी, क्या जैसे कृष्ण श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। यदि आपके पास ज्ञान है, भक्ति है, गुरु भक्ति है, और वह भक्ति बहुत उत्कट भक्ति है, प्रगति पर भक्ति है, तो आपके अंदर दिव्य ज्ञान आने में देर नहीं लगता है। प्रश्न यहां ये है कि हमारे भक्ति में उत्साह होना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं इतना उत्साह हो, इतना उत्साह हो कि शाम को सोते समय ये मन में ऐसी भावना हो कि भाई 3 कप बजे की जगना है मुझे, मंगल आरती में जाना। तब तो सोते समय कहते हैं कि आज कुछ बहाना करेंगे, सोने का मन कर रहा है। उत्साह, रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह जीवन में, उत्साह का वर्धन करना, उत्साह को संचित करना, उत्साह को अपने अंदर अर्जित करना, संभाल के रखना। एक गुरु जी थे, गुरु जी के पास शिष्य गया तो एक दो दिन माला जपा, वो ठीक से माला जपा, तो दूसरे दिन पूछा गुरुदेव भगवान आप ये बताइए कि भगवान कब मिलेंगे। गुरु जी ने कहा कि जब करो ठीक से भगवान मिल जाएंगे तुमको। बोले नहीं बताइए भगवान मिलेंगे कैसे, बोले कि जब करो। दूसरा दिन भी बीता, दूसरा दिन बीता तो फिर गुरु जी से जब करके कहा गुरु जी भगवान कब मिलेंगे। गुरु जी ने कहा जब करो मिल जाएंगे। तीसरे दिन भी यही प्रश्न किया, चौथे दिन भी, पांचवे दिन भी, गुरु जी ने कहा कि चल तुमको आज भगवान से मिलवा के लाता हूं। गुरु जी अपने शिष्य को जमुना जी के तट पर ले गए और बोले कि बेटा डुबकी लगाओ जमुना जी में, भगवान तुमको चाहिए ना। बोले हाँ हाँ डुबकी लगाओ। और जैसे डुबकी लगाया गुरु जी ने गर्दन पकड़ के पानी में दबा दिया। अब तो हाथ पांव फूलने लगा, छटपटाने लगा निकलने के लिए, व्यग्र हो गया, बड़ी अशांति हो गई। अब कैसे निकलूं इसमें से, गुरुजी ने दबा रखा। अब गुरु जी को मारना तो थोड़ी था, गुरु जी देखा कि अब ये ज्यादा फूल गया है सब, छोड़ दिया। अरे गुरु जी क्या किया आपने, अब तो मर ही जाता मैं, कितना मैं परेशान हो गया, देखो मेरा हाथ मुंह ये सब देखिए, कितना मैं परेशान हो गया था इसमें, अब तो मर ही जाता मैं। गुरु जी ने कहा कि पता चला भगवान कैसे मिलेंगे, बोले कैसे, बोले कि जैसे पानी से जल से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे अंदर जो तत्परता थी, जो उत्कंठा थी, उतनी उत्कंठा जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। इतनी उत्कंठा होनी चाहिए हमारे अंदर, उत्साह, इतना उत्साह होनी चाहिए, तब जीवन में आप जीवन के जितने पाप कर्म है वो ध्वंस हो सकता है, विनष्ट हो सकता है। जीवन में जितने बंधन है, या तो हम बंध गए हैं या बंधन ने हमें बांध लिया है, सारे बंधनों से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, बंधनों से छुटी जाऊं छोड़ना चाहते हैं, तो आप ठीक से गुरु के दिए हुए मंत्र को ठीक से जपना है। किसी के विषय में यदि जानना भी चाहते हैं आप, किसी को पवित्र भी करना चाहते हैं, शुद्ध भी करना चाहते हैं, तभी भी आप हम सबको भजन करना पड़ेगा। संत वैष्णव को क्यों ऐसे बात कहते हैं कि भाई दर्शने पवित्र होइलो, यही तुम्हारे गुण, तुम में ऐसा गुण है संत में कि भाई देखने से जीव के अंदर क्रांति आने लगती है, प्योर होने लगता है, शुद्धता आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भक्त, वह संत निरंतर भगवान के साथ बैठा है, निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अपने को प्रभु के साथ जोड़ करके रखना है, और जोड़ने का सबसे सुंदर मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी से लोग पूछते हैं ना कभी कभी, प्रभुपाद जी आप निरंतर जाप करने के लिए क्यों बताते हो? भक्त लोग झोली माला लेकर के गले में घूमते हैं या अंगुली डाल करके माला में रखते हैं, क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी ने बड़ा सिंपल उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा जप करने के लिए मैं इसलिए बताता हूं कि जप करने से, भगवान के नाम लेने से निरंतर तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ा रहता है, निरंतर संबंध बना रहता है भगवान से। भाई आप जप करेंगे हमेशा, मान लीजिए कभी कोई कोई कहता है कि मन नहीं लगता है, बड़ा मन परेशान रहता है, जप तो हो जाता है पूरा, लेकिन पता नहीं कब पूरा हो गया, मन ही नहीं लगा उसमें, ऐसे पराय शिकायत है हम भक्तों का। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता है फिर भी जाप कीजिए। यदि आपका मन भटकता है तो हमारा कन्हैया भी भटकता है, वही भक्तों को ढूंढता रहता है कहाँ मिले, कभी केसी घाट पर, कभी कालियादह पर, कभी चीर घाट पर, कभी जमुना जी में, यमुना तीरा वनचारी चलता रहता है, घूमता रहता है। आपका मन से यदि भेंट हो गया कन्हैया का तो पकड़ लगा एक दिन, जप ना छोड़िए कभी, जप करते रहिए निरंतर। इसलिए महात्मा चित्रकेतु बड़े सुंदर महान योगी के पास पहुंचे हैं, और ये अपने जीवन के विषय में, अपने जीवन के कमी को भी बता रहे हैं, और अपने जीवन को दोषों को वर्णन कर रहे हैं। हम जैसे बद्ध जीव पाप कर्म करने वाले, आप जैसे पुण्यात्मा संसार के बंधन से मुक्त होने वाले, आप त्रिकालज्ञ हैं, जानने वाले हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अनुवाद था ये, दूसरे श्लोक में कहते हैं नंबर 24 में, तथापि पृच्छतो ब्रियाम ब्रह्मनात्मने चिंतितम् भवतो विशुदश्चापि शोधितस्त्वं तदनुजया। अनुवाद, हे परम आत्मन, आप सब कुछ जानते हैं तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूं, अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूं। अंगिरा जी ने पूछा था कि तुम इतना कैसे हो, चिंतित क्यों हो, मन में चिंता सबको है खूब, हंसी नहीं आती है, मुस्कुराहट छिन गई है हमारी, कहीं न कहीं दबी हो, जैसे या तो किसी दूसरे व्यक्ति ने चिंता दे दिया है अथवा अपने आप चिंता को संग्रह कर लिए है। ज्यादा धन होना भी उसमें भी चिंता के एक विषय है, चिंता बनी रहती है कि धन कैसे कमाएं, और धन जब आ जाता है या परिवार परिजन जब आ जाते हैं तो मन में ये चिंता रहती है कि इनकी रक्षा कैसे करूं, कमाऊं कैसे, बल इसकी चिंता है, फिर दूसरी चिंता ये है कि भाई अब इसकी रक्षा कैसे करूं। कभी कभी दूसरे के द्वारा आप ठीक ठाक चलते हैं, दूसरे के द्वारा चिंता दे दिया जाता है, जीवन संकट में आ जाता है, जीवन को संघर्ष में डाल देता है दूसरा व्यक्ति, और कभी कभी हम अपने आप भी संघर्ष में अपने को डाल देते हैं। अपने आप को संघर्ष में डालना उतना खतरनाक नहीं है जितना दूसरा व्यक्ति हमें संघर्ष में डाल देता है या चिंतित कर देता है। दूसरे से बचाव रखना अत्यंत आवश्यक है। रोड में जितने एक्सीडेंट होते हैं तो प्रायः 99% दूसरे की गलती से होता है। हम तो सीधा जा रहे हैं, उसने थोड़ी सी स्टीयरिंग को बाएं दाएं किया, सही हमारी स्टीयरिंग का बैलेंस खराब हुआ, हम गए। दूसरों से बड़ा भय है। एक बार ना एक संत थे सूरदास जी, रात्रि में उनको तो दिन में नहीं दिखता था, दोनों आंख से सूर थे, तो रात्रि में जा रहे थे और हाथ में लालटेन लेकर के जा रहे थे, बत्ती जा रहे थे। सामने से कोई व्यक्ति आया, बोला कि अरे सूरदास जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम सामने वाले गांव में जा रहे हैं। थोड़ा हंस दिया उसने, बोला कि सूरदास जी बुरा मत मनाना, आपको तो दिन में भी नहीं दिखता है, रात्रि में लालटेन लेकर के चलते हैं, बत्ती लेकर के चल रहे हैं। सूरदास जी ने कहा कि तुमने ठीक कहा, ये जो लालटेन है, ये जो बत्ती है, मैं अपने लिए नहीं लिया हूं। बोले किसी लिए लिया? अपने लिए यदि नहीं लिया तो फिर किसके लिए लिया अपने? बोले कि तुम जैसे बुद्धिमान जीवों के लिए लिया कि हमें कोई ठोकर न मार दिया करके। बत्ती रहेगा तो देख लोगे ना तुम कम से कम। दूसरे से बचाव रखना, दूसरे के साथ बचाव रखने से दिव्य ज्ञान को अर्जन किया जा सकता है। अपने से ज्यादा खतरा नहीं है, सामने वाला से ज्यादा खतरा है, इसलिए बच करके, झुक करके, विनम्र हो करके, जीवन में शालीनता हो उसकी संग्रह करके ठीक से, और भगवान के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाना है, इसमें कहते हैं। अब 25 नंबर श्लोक हम देखते हैं। अभी चित्रकेतु जी ही प्रश्न कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा भारी इसके भूमिका में आपने पढ़ा होगा, हजारों कन्याएं थी, एक भी बालक नहीं थे, उनके पुत्र नहीं था, प्रथम रानी से पुत्र भी हुआ तो शेष रानियों ने उस बालक को जहर देकर के विष दे के मार दिया। वो चिंतित थे बहुत, मन में काफी परेशानी था, लेकिन सुख इस बात का है कि एक अच्छे संत के पास आ गए। जीवन यदि किसी ऐसे संत के हाथ में है, किसी वैष्णव के हाथ में यदि हमारा शरणागति है, जीवन है ठीक से, मजबूती से कोई संत ने हाथ पकड़ा है तो भगवान को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो संत हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों में उठा करके आपको डाल देगा वहां पर, ये संत का काम है, डाल देता है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतोपि। गुरु की कृपा यदि है तभी भगवान कृपा कर सकते हैं, और यदि गुरु रुष्ट गया, गुरु हमारे से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो भगवान कदापि हमारे से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो जगत गुरु के रूप में भगवान भी हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन बाह्य रूप से भी ये गुरु होते हैं। उनके हाथ में यदि हमारा मजबूती से हाथ पकड़ा दिए हैं तो भगवान को मिलने में थोड़ा भी संशय नहीं, संदेह नहीं है उसमें। तो इसमें कहते हैं जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति, चित्रकेतु कहते हैं, जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मलाओं या चंदन लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने से मैं अपने साम्राज्य ऐश्वर्य या संपदा से, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। यही है ना, संत के पास जाकर के बेटा धन मांगो तो बड़ा गलती है। यदि कोई संत आपको मिलता है, कोई वैष्णव मिलता है, कोई आचार्य आपके जीवन में है, दर्शन है, आपका जीवन शरणागति में है, तो संत के पास जाकर के ये कभी मत कहना कि मेरा दुकान मकान कैसे चलेगा, नाती पोते के शादी कैसे होंगे, ऐसा अनर्गल प्रश्न नहीं करना चाहिए कभी। संत के पास जाकर के आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर हो, जीवन के विषय में जानने के लिए प्रश्न उत्तर हो, इसलिए संत होते हैं। जीवन में शरणागति हो, गुरु के चरणों में शरणागति हो, समर्पणता हो, और प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसा प्रश्न हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए हैं ऋषियों के द्वारा, शनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है। उन प्रश्नों में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि संसारिक हो। हम लोगों को भी इन बात से सीखना चाहिए, कभी भी संसारिक प्रश्न ये तो ऐसी अपने आप मिल जाता है। यदि आप संत के पास जाओगे ना, अपने आप आए बाएं ये सब चीज चलता रहता है, सुख संपदा ऐश्वर्य भोग पैसा प्रतिष्ठा पद पोजीशन, ये सब कुछ आपके जीवन की यात्रा में लिखा, ये मिलता रहेगा और बिछड़ता भी रहेगा साथ में, लेकिन ये सब बिना मांगे, बिना पूछे, बिना संकिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक क्षेत्र आपको बिना उनके साथ संग किए नहीं मिलेगा, उनका संग करना चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार आदमी दुखी हो, परेशान हो, और उसको खूब बढ़िया चंदन लगाओ, बढ़िया से हार पहना दो, बढ़िया बढ़िया पकवान खिला दो, अरे संसार के हर वस्तु उसके सामने रख दो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं ना, संसार के लोग जब हम परेशान होते हैं तो बच्चे भी वही हैं, पत्नी भी वही है, घर मकान भी वही है, तो कहते अभी तुम यहां से हटो, मेरा मन नहीं लग रहा है, अभी तुम बाहर चलो, बाहर चलो। क्यों भाई? अंदर से हम परेशान हैं। और अंदर से परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम लोग अंदर से बहुत कमजोर हैं, टूट चुके हैं हम सभी आदमी, बहुत कमजोर हैं। छोटी मोटी भी यदि विपत्ति आपत्ति आ जाए ना जीवन में, तो एक ही उपाय उसको दिखता है, एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है कि आत्महत्या कर लो, क्योंकि कमजोर है वो अंदर से। हमें भक्ति के द्वारा अंदर से बहुत मजबूत होना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। अंदर से हम सभी आदमी बिखर गए हैं, टूट गए हैं हम सभी आदमी। गुरु की शरणागति ठीक से नहीं है, जिहवा पर नाम भी ठीक से नहीं है। संसार के नाम, भगवान के नाम लेते लेते संसार के हर वस्तु याद आता रहता है हमारे जीवन में। ठीक से यदि शरणागति हो, समर्पण हो गुरु के चरणों में, ये संसार का जो अभाव, जो वस्तु हमें अभाव महसूस होता है, जो अभावग्रस्त जीवन है, उस जीवन को पूर्ण कर देता है भगवान की भक्ति और गुरु की शरणागति। गुरु मुखा पद्म वाक्य चीते ते करीहा, आक्य माने बैठा लेना, ठीक से समझ लेना उस बात को। और क्या करना, आर ना करीहा, मन में और कोई इच्छा ही नहीं रखना, ऐसी सुखी जीवन हो जाएगा। प्रभुपाद जी के पास एक कोई सदगृहस्थ व्यक्ति आए तो प्रभुपाद जी से अपना सारा उन्होंने परेशानी बताया। प्रभुपाद जी मैं बहुत परेशान हूं, बड़ी समस्या है जीवन में, जीवन में हलचल है, बड़ी क्रांति है हमारे हृदय में। बच्चा बात नहीं सुनता है, बेटी घर में लेट आती है, पत्नी तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है हमारी बात, वो तो नहीं सुनती है दोनों तरफ से है, आप भी कहां सुनते हो तो अब बड़ा परेशान हूं मैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आपका परेशानी एक मिनट में ठीक कर सकता हूं। बड़ा खुश हो गए, बोले प्रभुपाद जी ठीक कर दो। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको बशर्ते मेरी बात मानना होगा। बोले हाँ बात मानूंगा। बोले कि घर में जितने परेशान कर रहे हैं ना आपको, उन सबको लात मार के मेरे पास आओ, अब वो परेशानी कहाँ दूर होगा। भाई एक मिनट में आपका रोग दूर हो सकता है, लेकिन गुरु के बात को मानो ठीक से। आप रोगी हो, पेट में दर्द है और डॉक्टर कहता है कि चिड़ना पड़ेगा, आप चिड़वाने से मना कर रहे हो, रोग कहाँ से ठीक होगा आपका। आपकी परेशानी एक सेकेंड में दूर कर सकता हूं, पत्नी को, बच्चे को, पैसा प्रतिष्ठा को लात मार के आ जाओ मेरे पास, ठीक हो जाओगे। तो ये लेटर में है, हमारे पास कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी के लेटर सेंड करते हैं, भेजते हैं, हमें सब बहुत बड़ा संग्रह करके रखा हूं उसमें, उसमें पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के लेक्चर को। तो जीवन में जो परेशानी है हमने संग्रह किया है, और यदि परेशानी है और नाना प्रकार के घर में ऐश्वर्य भोग है, वो एक भी अच्छा नहीं लगता उसमें से, न खाने के मन करता है, न रात्रि में नींद आती है, न दिन में मन लगता है, न दोस्तों के साथ बैठ पाते हैं, न कोई बिजनेस में मन लगता है, क्योंकि मन परेशान है। और मन इसलिए परेशान है कि भगवान से संबंध हमारा टूट गया है। तैयारी पूरी होनी चाहिए, जैसे चैतन्य चैतामृत में तैयारी की बात लिखी है। अब यह श्लोक है, अच्छा समय भी हो जा रहा है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। मैं तेजी से भाग रहा हूं उधर। तो जैसे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास जी लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि तैयारी कैसी होनी चाहिए। गुरु माली है और शिष्य क्या है, भूमि है, फुलवारी है, बगीचा है। कहीं कहीं तो गुरु धोबी शब्द आया है और शिष्य जो है वो कपड़ा है। कहीं कहीं कुम्हार शब्द आया हुआ है और उसका शिष्य कौन है, मिट्टी है। मिट्टी की तैयारी देखते हैं, वो सुंदर सुंदर जो घड़ा बनता है वो कैसे बनता है, नाना प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं कैसे, वो मिट्टी की तैयारी है। कुम्हार के चरणों में मिट्टी खोद करके लाता है, खोदने के बाद में उस पर पानी डालता है, पानी डालने के बाद में मसल देता है, सब कुछ करता है, वो मिट्टी कुछ नहीं बोलता है। अनेक प्रकार के उसमें से बर्तन निकाल देता है, मिट्टी कुछ नहीं बोला। मिट्टी में से बर्तन निकाल करके धूप में उसको बिल्कुल पका लिया, मिट्टी कुछ नहीं बोली, मिट्टी वह जो बर्तन सूख गया तो उसको आग में उतार दिया, वो मिट्टी कुछ नहीं बोली। आग में उतारने के बाद जब तैयार हो गया घड़े मटका ढक्कन दिया जो भी तैयार हुआ, उसको बाजार में ले जाकर के बेचने के लिए तैयार कर दिया, वह मिट्टी कुछ नहीं बोली। खरीदने वाला व्यक्ति 5-10 रुपया दे करके 50 बार घड़े पर हाथ मार करके और ले गया अपने घर में, उस घड़े के गर्दन में फंदा लगा दिया और फंदा लगाने के बाद उसको कुआं में उतार दिया, वो मिट्टी कुछ नहीं बोली। इसके बाद में कुआं से जल निकाल करके सबको पिला दिया, वो मिट्टी कुछ नहीं बोली। मिट्टी वह मिट्टी का जो बर्तन कुआं से निकला था वह घड़ा वो फूट गया, वह मिट्टी मिट्टी में मिल गई, वो मिट्टी कुछ नहीं बोली। इतनी तैयारी होनी चाहिए, इतनी शरणागति होनी चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अतः हे परम साधु, मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, उबारिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबको नारकीय दशाओं से उबार सकें। प्रश्न भी बहुत अच्छा है। यदि आप सतगृहस्थ हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो बालक बालिका तो होना ही चाहिए जीवन में, घर हरा भरा रहता है। उन्हीं बालक बालिकाओं से कभी कभी बैराग भी आता है। जब वो बालक बड़ा होता है, बात नहीं सुनता है, तो फिर बैराग आता है, फिर बड़ा बढ़िया बैराग आता है। फिर पत्नी कुछ बोलती है तो दिन दिन भर लोग घर में नहीं जाते हैं, बैराग आता है उनको, घर में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में मेरे संतान हो, पुत्र और पुत्रियां हो। क्योंकि हमारे जितने पितर लोग हैं वे सभी पिंडदान होता है ना, बोधगया में पिंडदान करते हैं। पिंडदान किए बिना, जल दिए बिना पितरों को वे सब नरक वासी हो जाते हैं। इतनी बड़ी हमारी संख्या है, इतना परिवार है, इतने सदस्य हैं, हम सब नरक वासी हो जाएंगे, नरकीय जीवन को व्यतीत करना होगा। आप ऐसा कुछ कृपा करें, ऐसी दया कीजिए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तात्पर्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वह अपने पितरों को पिंड दान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी जिससे वह स्वयं तथा उसके पितृगण नरक से उबर सकें। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सकें। इसलिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना किया कि वे कुछ ऐसा करने की कृपा करें जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। संतों में बड़ी ताकत है ना। संत महात्मा देखिए, वो जानते थे कि ये महात्मा ऐसे हैं, संत ऐसे हैं कि इनकी वाणी निष्फल नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि संत भगवान के साथ जुड़ा है। आप देखिए, दशरथ जी के 3-3 रानियां थी, सोने जैसा महल था। महात्मा दशरथ स्वयं भी अपने आप में बहुत बड़े महात्मा, जीवन में चौथापन आ गया, बाल श्वेत हो गए और पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। वो कहाँ गए? किसी वैद्य के पास तो गए नहीं, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गए, वो केवल अपने गुरु जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जाकर के, और गुरु के चरणों में जब गए तो कैसे गए? जितने जीवन में राजसी ठाट बाट था, मुकुट था, जितना ऐश्वर्यशाली शरीर था, वो सब कुछ छोड़ करके और नग्न पांव गुरु के आश्रम में चले गए। और गुरु जी से अपने सुख की भी बात किया, दुख का भी बात किया, और ये कह दिया कि गुरुदेव भगवान, आपके जैसा समर्थ गुरु प्राप्त होने के बाद इस दीनहीन, इस पतित अकिंचन दशरथ के पास पुत्र नहीं है। इतना बात कहते ही वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धर्म धीर हुई है शुद्धचारी। गुरु ने भविष्यवाणी कर दिया कि तुम मेरे पास आ गए हो, अब चिंता की बात नहीं है, एक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, वो भी मरने जीने वाला पुत्र नहीं। तुम गुरु के पास आए हो, तुम्हारे गोद में मैं ब्रह्म को उतार करके डाल दूंगा। ये संतों की महिमा है, ये महात्माओं की महिमा है। इसी प्रकार से एक दृष्टांत देते हैं, कथा कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका कोई संतान नहीं था। संतान नहीं था तो उनके घर में संत महात्मा आते थे। तो एक दिन एक बड़े योगी आए उनके घर में। अब ऐश्वर्य भोग तो अपार था, संपदा बहुत था घर में, लेकिन घर में कोई बालक नहीं दिखा। योगी ने कहा कि महाराज, आपके घर में कोई बालक नहीं है? बोले कि ना, बड़ा दुर्भाग्य है जीवन का, कोई संतान नहीं है। पत्नियां तो हैं, संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, बालक नहीं है। योगी ने राजा के हाथ को देखा, तब बोला कि अरे, तुम तो बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव हो, तुम्हारे तो 60 जन्मों तक बालक नहीं होंगे। वो तो बेचारा एक जन्म के लिए रो रहा था, वो योगी ने 7 जन्म का दुख बढ़ा दिया उसे, और दुख बढ़ा दिया, और योगी कह के चला गया। कुछ दिन के बाद एक संत गए, महात्मा गए वहां, वैष्णव लोग जाते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, एक दो वैष्णव हैं परिक्रमा जाएंगे तो गौरंगा, वो जो बैठे रहेंगे वो भी सब बोलते रहेंगे सब। वो संत गए उनके राजा के पास, सब संत गए तो संत से उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो बड़ी सेवा किया, शुश्रूषा किया, सेवा के उपरांत कहा कि महाराज, आप तो संत हैं, आप वैष्णव हैं, विष्णु के प्रिय हैं, कुछ ऐसा उपाय कीजिए ना कि मेरा संतान हो जाए। संत ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को भगवान से बताऊंगा जाकर के, आपको संतान हो जाएगा, चिंता मत करो। संत तो बोल देते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, अब उनको पूरा करना पड़ता है, वो भी परेशान रहते हैं संतों से कि पता नहीं वो सेठ के पास गया क्या बोल के आने वाला, अभी उसको पूरा करना है। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा ना कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तो बोले सर्वत्र है। तो खंभा पर इशारा किया कि इसमें भी है क्या, बोले हाँ इसमें भी है, सर्वत्र में खंभा तो है। तो भागवत जी में लिखा है कि पहले से नरसिंह भगवान नहीं बैठे थे, जब भक्त प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में भी है, तो उनको नरसिंह के रूप में आना पड़ा, उसमें बैठना पड़ा उनको। और संत लोग तो डरते हैं कि पता नहीं क्या कह के आ जाएगा, वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। सत्यम विधातु निजभृत भाषिता, अपने भृत यदि बढ़िया आप दास सेवक बन गए तो आपके एक एक बात को ध्यान रखता है परमात्मा। संत ने कहा कि अच्छा, मैं भगवान से जाकर के बात करता हूं, बताता हूं मैं। योगी भी भगवान के पास गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोले कि मैं सेठ के पास गया था, उसके पास तो 7 जन्मों तक बचा नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। संत गए, प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले कि प्रभु, मैं एक सेठ जी के पास गया था, बड़ा सेवा किया उन्होंने मेरी, बड़ी शुश्रूषा किया, आप ऐसा करो ना कि उसको बालक दे दो, बच्चा दे दो एक। अब कहा क्या टाले भगवान, कहा अच्छा ठीक है जैसे तुम कहते हो। एक साल की अवधि पूरा होते होते उस सेठ के घर में एक बालक का जन्म हो गया। बालक का जन्म हुआ तो योगी एक साल के बाद फिर उस घर सेठ के घर में गए, देखा कि एक छोटा बालक सा घूम रहा है, खेल रहा है। योगी जी ने पूछा कि ये बालक, बोले सरकार आप ही का है ये अपना? बोले कि नहीं, आपके तो 7 जन्मों तक बच्चा नहीं था। और योगी सीधे भगवान के पास गया, आपने उसको बालक कैसे दिया, बेटा कैसे दे दिया आपने, उसके जीवन में तो पुत्र की संतान प्राप्ति था ही नहीं। भगवान ने कहा कि एक संत आया था, भक्त आया था, उसने कहा तो हमें देना पड़ा। तो बोले कि मैं भी तो तुम्हारा भक्त हूं, योगी कहता है। बोले कि भक्त हो लेकिन तुमने कहा नहीं था ना मेरे से पुत्र के लिए, उसने मेरे से कहा था इसलिए मैं दे दिया उसको। अब समझो संत में और योगी में कितना अंतर है। इसलिए वैष्णव बनना चाहिए, निरंतर मंत्र का जाप हो, जैसे भागवत के मंत्र भी आप श्रवण कर रहे थे। जिस भागवत के मंत्रों का आप श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी ने 18,000 ऐसे ऐसे मंत्र को इसमें इस भागवत जी में बोला है, कहा है। निरंतर भागवत सुनते रहे आप सब, संतों का संग करते रहो और निरंतर जाप करते रहो। मेरी गाड़ी को जब महात्मा नारद जी ने उपदेश दिया तो यही बात कहा था कि नदी के तट पर चले जाओ, ये पाप कर्म छोड़ दो, हत्या छोड़ दो, या अधमरा जीव को छोड़ दो, तुम मारते हो ये जीव तुम्हें सब खाएंगे, एक दिन तैयार हैं खाने के लिए, इनका त्याग कर दो। उसने कहा कि तो भोजन कहाँ से मिलेगा? बोले कि मैं दूंगा ना। नारद जी ने कहा कि नदी के तट पर जाओ, एक तुलसी का वृक्ष लगाना और तुलसी के वृक्ष लगा करके त्रिकाल स्नान करना, स्नान करके तुलसी जी के प्रदक्षिणा करना और निरंतर भगवान के नाम लेना। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। कीर्तन करो और वह मृगारी जीव जो कि पाप कर्म से जीवन रत था, भोजन नहीं मिलता था, इतने लोगों ने देखा कि अब तो मृगारी भक्त बन गया, संत बन गया, वैष्णव बन गया, मृगारी के बड़े बड़े आश्रम बन गए, इतना अन्य क्षेत्र चलने लगा वहां। ये मंत्र की महिमा है। आज लोग कहते हैं कि जो हरे कृष्ण वाले हैं ना बहुत धनी हैं। आज मेरे से कोई सुबह में 1 घंटा कथा बताता हूं किसी को बहुत सालों से, तो बोल रहे कि इस्कॉन के भक्त बहुत धनी हैं लोग। मैं धनी कहा है, सब फकीर है, वो तो धनी कहा है, वो तो जो भी धन है भगवान का है। आप संतों से कुछ बात कहते हैं तो हमारा कहा तो भगवान का सब है, उनको देना है मुझे, आपको कैसे दे सकता हूं। कितना सुंदर बात कहते हैं संत लोग, सब भगवान का है। शरीर तक भी, मानस देह गेह, शरीर को मन को सब कुछ भगवान के चरणों में आकर के भगवान के पास सीधे अपने शरीर को डंडा के जैसा पटक देते हैं, लो तुम्हारा ये शरीर। और जब शरीर आ गया, मन आ गया, तो मन के साथ धन नहीं आ गया, धन तो उन्हीं का है सब, क्योंकि धनवान कहाँ है, तो सब फकीर हैं बेचारे। 3 बजे उठते हैं वो तो प्रसादी पुरसादी मिलता हुए ले लेते हैं। मैं बोला कि देखो इसलिए आपको धनी लगते हैं कि अब 56 प्रकार का भोग लगता है, भगवान का दिव्य प्रसाद है, तो भोग लगने के बाद कहाँ जाएगा, भगवान तो दृष्टि से खा लेते हैं, देख के खा लेते हैं, तो भगवान अपने भक्तों पर दया रखते हैं ना, और 56 प्रकार के भोग दे देते हैं, तो भोग तो फेंका नहीं जा सकता ना, फिर भक्त लोग अपना खूब, इसलिए आपको धनी लगते हैं। मैं कहा कि देखिए जो जो वस्त्र भी संत पहनते हैं, मताएं आभूषण भी पहनती हैं, वो बिना भगवान को दिए नहीं पहनते हैं, वो सब प्रसादी है। और जो जीवन में प्रसाद खाएगा, प्रसाद पहनेगा, उसके जैसा सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है, फिर भगवान के प्रसाद। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।